Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से आप सबका स्वागत है। आज बुधवार के भगवद गीता के सत्संग में धन्यवाद करते हैं राजेश प्रभु और आप सब भक्तों का कि हमको आपने आज सेवा का अवसर दिया है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है और भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? तो दिव्य ज्ञान कौन देता है? दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं, दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। इसलिए चौथा अध्याय शुरू होता है, भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। चौथे अध्याय की शुरुआत से ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। और फिर भगवान उस दिव्य ज्ञान की परंपरा बताते हैं कि ऐसे सूर्य देव, मनु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद यहां अयोध्या की स्थापना हुई और मानव समाज में ये ज्ञान आया। फिर राजा परंपराओं, राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान चला और फिर दीर्घ काल से ये ज्ञान नष्ट हो गया। तो ज्ञान कैसे दिव्य नष्ट हो गया? इसका मतलब ये है इस ज्ञान को जानने वाले राज ऋषि नहीं रहे। लोगों ने इस ज्ञान के ऊपर अपने मनमानी टीका टिप्पणी की और उसका असली सार ही गुम हो गया। तो अर्जुन को बहुत चिंता हुई, कहा कि हमारे कुल में कोई राज ऋषि नहीं, इसका अर्थ है पांडु कुल में कोई राज ऋषि नहीं हुआ, हमारे समय में ही ज्ञान लुप्त हो गया। तो अर्जुन के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा निराशा देखकर भगवान मुस्कुराते हुए कहे, मयाते अद्य, आज मेरे द्वारा योग पुरातन पुराना जो गीता का ज्ञान दोबारा अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं। अब तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, हां मैं राजऋषि, ऐसी कौन सी मेरे खास बात है कि भगवान मेरे को लगी ज्ञान दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा, भक्तो सीमे सखाचे, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए इस रहस्य को समझ सकोगे। तो भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए भक्त होना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ आता है, शू कहे गुजराती में अनिवार्य? अति जरूरी है, भक्त होना अनिवार्य है। गीता के विषय में, गीता के महत्व में लिखा है सर्व उपनिषदो गावो। अगर सारे वैदिक साहित्य गाय बन जाए तो गाय में मुख्य चीज क्या होती है? दूध। सर्व उपनिषदो गावो, दूध तो गाय में है, लेकिन गाय का दूध निकालने किसको आता है? गाय में दूध है, निकालने तो आना चाहिए ना। लोगों को गाय का दूध निकालना नहीं आता, इसलिए गला काट के खा जाते हैं उल्लू के पट्टे, समझ रहे हैं? दूध निकालना ही नहीं आता। ये माता जी लोग, कितनी लोग गाय से दूध निकाल सकती है बताओ? जमाना चला गया, दूध निकालना नहीं आता है। लेकिन सारे शास्त्र रूपी गाय से दूध किसने निकाला? दोगदा गोपाल नंदन। गोपाल गायों को, गायों के पालने करने वाले नंद बाबा का बेटा गोपाल नंदन, वो तो गाय का दूध निकालने में बहुत एक्सपर्ट था। उसने दूध निकाला, बोला गाय ने दूध दिया कैसे? बगैर बछड़े के तो गाय दूध देती नहीं है। बोला पार्थो पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा बन गया। गाय तब दूध देती है जब बछड़ा गाय के स्तन में मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे उतरता है और बछड़ा थोड़ा पीता है, फिर ग्वाला बछड़े को हटाता है तब दूध निकलता है। फिर गाय दूध देना बंद करेगी, फिर बछड़े को लगाएंगे गाय के तो फिर दूध देगी। इसका अर्थ यह है कि वेदों के शास्त्रों का जो रस रूपी ज्ञान असली दिव्य है, वो केवल भक्त के द्वारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बछड़ा भगवान भक्त वत्सल है, वत्स का मतलब बछड़ा, भक्त जब भक्त होगा तभी ज्ञान प्रकट होगा, नहीं तो ज्ञान किताब पढ़ पढ़ के अंधे हो जाओ, भले चश्मे चार मोटा मोटा पहनो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन ने जब भगवान ने कहा आप भविष्य के परंपरा के आचार्य आपको हम चुन रहे हैं आज भगवद गीता के, तो अर्जुन ने कहा अब तो मेरा एक दायित्व होता है भगवान से प्रश्न पूछ लूं कि आप तो मेरी उम्र के मेरे सामने खड़े हो, सूर्य देव इतना पुराना, उसको आपने ज्ञान दिया, ये मैं कैसे मान लूं अथवा भविष्य में लोग इसको कैसे मानेंगे। तब भगवान ने कहा बहुनी में जन्मानी तब च अर्जुन, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं। इसको लेकर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पांडव भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, पार्षद हैं, जहां जहां भगवान का अवतार होता है वहां पांडव जाते हैं। बस अंतर सिर्फ ये है भगवान कहते हैं कि मुझे सब याद है अर्जुन और तुम्हें भूल गया। कई बार हम आए हैं, तुम भी आए हो अर्जुन, मैं भी आया हूं, मेरे को सब याद है और तुमको सब भूल गया। बोला भूल क्यों गया? बोला तेरा शरीर बदल जाता है जब बार बार तुम मेरे साथ आते हो, लेकिन मेरा शरीर चिन्मय दिव्य सच्चित आनंद रूप है, वो बदलता नहीं है। भूलने का कारण शरीर का परिवर्तन है। हमारा शरीर बचपन से जवानी में जाता है तो बचपन की बातें भूल जाती हैं, जवानी से बुढ़ापे में जाता है तो बूढ़ा जवानी की बातें भूल जाती है, बुढ़ापे के बाद मर जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर तो परिवर्तनशील है ही नहीं, तो उसमें कभी भूलते नहीं। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान था, भगवान की ओर ऐसे देखा, बहुनी में जन्मानी, आपका जन्म होता है, जन्म तो वो कर्मों से होता है, तो आपका जन्म कैसे होता है? भगवान ने कहा अजोपी सन्नाव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर कभी बदलता नहीं है। अजोपी सन भूतानाम ईश्वरों पे, सारे प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, मेरी अपनी प्रकृति, मेरा अपना स्वभाव, उस स्वभाव के कारण। आपका कैसा स्वभाव है? बोला मेरा स्वभाव भक्त वत्सल है, जब मेरे भक्त संकट में होते हैं मुझे बुलाते हैं तब मैं चला आता हूं, मेरे स्वभाव के कारण मैं आता हूं। तो अर्जुन ने बोला कब आते हो? तो बोला जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं। ने बोला तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म स्थापन करने के लिए किसी को भेज के काम चला लिया करो ना, कहीं बेटे को भेज दिया तो ईसाई धर्म चल पड़ा होगा, कहीं संदेश वाहक को भेजने से कोई धर्म चल सकता है, तो फिर आपको आने की। तब भगवान ने कहा हाँ, परित्राणा है साधु नाम, मैं तो साधुओं की संरक्षण के लिए आता हूं, और जब आता हूं तो फिर दुष्टों का नाश हो जाता है। वो कैसे होता है? एक आदमी हमारी तरह कमजोर शख्स था, लाइन में खड़ा था रेलवे टिकट लेने के लिए, तो जो आगे दो तीन आदमी थे ना, उनका सर जाके लगा दीवार में। उसने बोला धक्के क्यों दे रहे हो? बोले मैं धक्के नहीं दे रहा हूं, मैं केवल लंबा लंबा सांस ले रहा हूं, मेरे पेट से तुम्हारा सर लगता है दीवार में, मैं क्या करूं? मैं सांस ले रहा हूं भाई, मेरे सांस लेने से तेरा सर फटता है तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा पूतना मैं तेरा तो स्तन पान कर रहा हूं, तेरा प्राण निकलने गया मैं क्या करूं? मैं तेरे को मार तो नहीं रहा था, मैं तो तेरा दूध पी रहा था, तेरे प्राण निकल गए मैं क्या करूं? अरे तू तो आया था केशी, मैं तो तूने मेरे को खाना चाहिए, मैंने तेरे को हाथ तेरे मुंह में डाल दिया, अब तेरा गला बंद हो गया, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते मैं तो आता हूं तो मर जाते हैं कोई, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मर ही जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा बात तो ठीक है, आप धर्म की स्थापना करते हैं तो अधर्म का नाश भी कर देते हैं, लेकिन फिर तो काम खत्म करके तो जल्दी चले जाते होंगे, जैसे हिरण्याकश के मारने के लिए अपना नरसिंहदेव का अवतार लिया, प्रहलाद की रक्षा की, लेकिन फिर भी आपके तो अवतार का कोई और विशेष रहस्य है क्या? तब भगवान ने कहा कि जन्म कर्म शमी देवियम, मैं जब आता हूं तब ऐसी अद्भुत लीलाएं करके जाता हूं जिनको हजारों लाखों सालों तक मेरे भक्त सुनते हैं और मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाते हैं। मेरे आने का मुख्य उद्देश्य यह है, मैं इसलिए आता हूं। और फिर भगवान ने आगे कहा कि इस मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। पूता मदभावम आगता बहवो, बहुत सारे वीत राग भय क्रोधा, वीत छोड़ दिया, राग आसक्ति संसार में, भय अपनी व्यक्तित्व गंवाने का भय, वीत राग भय क्रोध, पता नहीं ये धर्म वाले ठीक है कि ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ऐसे क्रोधित हो जाता है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, तो इन सबों का त्याग करते हैं। वीत राग भय क्रोधा मन माया माम आश्रिता, मेरा आश्रय लेते हैं, तपस्या तपस्या करते हैं, घंटे घंटे बैठकर कथा सुनते हैं, दो दो घंटे बैठकर मेरे नाम का जप करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। मद भावम आगता पूता, पवित्र हो जाते हैं, मद भावम आगता मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। तो कौन बोल रहा है ये श्लोक? हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मद भावम आगता। अब मद शब्द की जगह पे जो बोल रहा है उसका नाम डालो, क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना भावित, वो अपने आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। बस भय रोग वीत राग, राग भय और क्रोध तीन से मुक्त होना है। बात तो अच्छी है, तो सब लोग ऐसे क्यों नहीं करते? बोला सब लोग मेरे को कृष्ण भावना के लिए मेरे पास आते ही नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यंती तांस तथेव भजामि हम, वो जैसे जिस काम के लिए मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उनसे व्यवहार करता हूं, वो मेरे लिए तो मेरे पास आते ही नहीं है, मेरे को प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं, मुझसे कुछ लेने के लिए आते हैं। भला आपके पास, मतलब मेरे पास भी बहुत कम आते हैं, कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंते ये देवता, वो मेरे पास भी नहीं आते हैं, वो जो मेरे रखे हुए देवता हैं इस दुनिया के संचालन के उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो संसार का सुख चाहते हैं, मेरे को नहीं चाहते, इसलिए मैंने वर्ण आश्रम व्यवस्था बना के रखी है कि आस्ते आस्ते वो आगे बढ़ के मेरे को समझने का प्रयास करें। और फिर भगवान ने आगे अपने समझने के लिए कुछ यज्ञों का वर्णन किया कि यज्ञ बहुत सारे करने पड़ते हैं, उसके द्वारा आदमी पवित्र होता है तो फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। 12-13 यज्ञों का वर्णन किया भगवान ने, ये सब करने, स्वाध्याय यज्ञ भी बोल दिया, प्राणायाम यज्ञ भी बोल दिया, द्रव्य यज्ञ भी बोल दिया, ये सब ज्ञान प्राप्ति के लिए होते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, ज्ञान इतना सारा करने की जरूरत है कि और कोई रास्ता ज्ञान प्राप्त करने का है? तब भगवान ने कह दिया, आपको दिव्य ज्ञान अगर चाहिए तो मैं देता हूं, वो जो मेरा दिव्य ज्ञान है ना वो आपको कहां से मिलेगा? तब भगवान ने कहा, तद विधि, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है? विधि का मतलब तरीका, रास्ता। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का क्या अर्थ है? क्या शब्द क्या है? प्रणी पाते ना, प्रणी का मतलब है प्रणाम करना, पाते ना का मतलब चरणों में बैठ जाना। वैसे पाते पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना, भगवान के, भगवान ने परिणामों का नहीं कहा, वैसे प्रणामों कह सकते हैं। बहुत से लोग रोज मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, साधु को बोल के महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार, लेकिन कोई बैठता नहीं, चलते फिरते। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब प्रणाम वाले शिष्य हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं, सुनने के लिए भी नहीं आए हैं, प्रणाम करके चले हैं। प्रणी पाते ना, आओ प्रणाम करो। प्रणाम करने का मतलब, प्रणाम भी बहुत अलग प्रकार का, एक हाथ जोड़ के महाराज नमस्कार ये भी प्रणाम है, सर नीचे करने का मतलब है आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपसे कम जानता हूं, आप मुझे कुछ सुनाइए, ये इसका अर्थ है। प्रणाम नमस्कार का मतलब है मैं आपके सामने झुकता हूं, क्यों? आपके, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। फिर पांच अंग प्रणाम है, सर नीचे बिल्कुल रखना कि अब मैं मेरी बुद्धि का उपयोग नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे सो मैं करूंगा, मैंने सर आपको दे दिया। और एक है दंडवत प्रणाम, अब आप उठाओगे तो उठेंगे, नहीं तो हम यहीं सोए रहेंगे। अब यहां से हम जाने वाले नहीं है। तो प्रणिपातेन का मतलब जाके प्रणाम करके शरण लेकर वहां बैठ जाओ। बोला क्या करूं बैठ के? बोला परिपर्शनेन। पर्शनेन भी नहीं लिखा, परिपर्शन। परिपर्शन का क्या अर्थ है? परि का मतलब परमात्मा को प्राप्ति के। परा दिव्य प्रश्न पूछो, ये पूछो कि जन्म मरण से मुक्त कैसे होंगे, ये पूछो कि भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है, हम क्या करें, ये मत पूछो कि कौन से नंबर के ऊपर सट्टा लगाएं, कौन सा व्यापार करें, ये मत पूछो। संसार की बातें उससे मत पूछो। परिपर्शन परम की प्राप्ति के प्रश्न पूछो। तो बैठोगे तो पूछोगे, चलते चलते तो नहीं पूछते आप कल बैठने से। तो प्रणाम करके मत जाओ, प्रणाम करके चरणों में बैठको और भगवत प्राप्ति के प्रश्न पूछो। सेवया, और जो उत्तर दे उसका सेवन करो। जब आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर देगा वो, तो आपको उसका सेवन करना पड़ेगा। वो कहे कि हरे कृष्णा जपो तो हरे कृष्णा जपना पड़े। तब जब आप सेवन करोगे, सेवा करने का मतलब कि आज्ञा का पालन करोगे, आपने पूछा तो आपको उत्तर देगा, आपको उत्तर देगा तो उसका पालन करो। महाराज ये तो आप करना बस। प्रश्न है सेवा, और जब आप सेवन करोगे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तेरे को वो ज्ञान का उपदेश करेगा। कहां से लाया? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी नाम तत्वदर्शन, वो तत्वदर्शी महात्मा है। हम इसका अर्थ करते हैं उपदेक्षन्ति का मतलब ऊपर उठा के, उप का मतलब ऊपर उठाना, इक्षति का मतलब दिखाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मंदिर में जाते हो तो माँ बाप उसको उठा के कहते हैं बेटा वो देखो, करते हैं ना, देखा है? ऐसे वो गुरु फिर तेरे को उठाएगा और ऐसे कहेगा वो देखो वो भगवान, उपदेक्षन्ति ऊपर उठा के तुम्हें दिखाएगा। क्यों? तत्व दर्श, उसने तत्व का दर्शन, कौन से तत्व का दर्शन किया है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उस तत्व का दर्शन किया है। भगवान के अवतार और लीला के तत्व को वो जानता है और वो तत्व आपको दिखाएगा। उस तत्व का शिक्षा देगा, दीक्षा देगा, वहां तक पहुंचाएगा। तत्व दर्शन, और फिर एक बार उसने ये आपको उपदेश दे दिया दिव्य ज्ञान का, तो फिर उससे क्या होगा? यहां से आगे आपका आज का श्लोक आएगा। तो पहले गुरु के चरणों में जाएंगे, प्रणाम करके बैठ जाएंगे और परम की प्राप्ति का, परम सत्य को जानने का प्रश्न करेंगे, और फिर जो वो उपदेश देगा उसका पालन करेंगे। ऐसे ज्ञान नहीं देगा, उपदेश का पालन करेंगे। भाई भगवान का नाम जपना है तो जपेंगे और देखेगा कि जप रहा है तब। इसलिए प्रभुपाद कभी कहते, इसलिए हमने संस्था के अंदर नियम बनाया है, 6 महीने तक जब से कम हरे कृष्णा मंत्र का जप 2-1 घंटा करेगा, कम से कम 16 माला, 4 नियम का पालन करेगा, तब हम उसको क्या करेंगे? दीक्षा देंगे। शिक्षा दीक्षा फिर शुरू होगी। दीक्षा देंगे का मतलब है कि उसको शुरू करेंगे आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए, फिर उसको आगे चलना पड़ेगा। तो इसके बाद का श्लोक क्या है? इसके बाद का श्लोक है यज्ञात्वा। अगर ये जान लिया क्या जो प्रमाणिक गुरु ने उपदेश दिया तत्व ज्ञान का, वो अगर जान लिया, न पुनर्मोहम एवं याससी पांडव, फिर अर्जुन तुम कभी ऐसे मोह में दुनिया में नहीं पड़ोगे। हम सब दुनिया में किस में बंधे हुए हैं? मोह के पास में बंधे हुए हैं। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि भगवान से इतनी आसक्ति हो जाएगी और किसी में आसक्ति करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। किसी न किसी में तो हमको आसक्ति करनी पड़ेगी। जब भगवान की लीला में, गुण में, रूप में, कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी तो फिर और किसी में आसक्ति के लिए समय भी नहीं बचेगा। तो फिर दोबारा इस दुनिया में मोह में नहीं पड़ेंगे। पुनर्मोह मनो या चोरे ये न भूतानि अशेषाणि दृश्य आत्मनो अथमयी। और फिर तो आप देखेंगे कि ये सारे प्राणी मुझमें हैं। इसका अर्थ ये है कि सब जगह आप मुझे देखोगे। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है कि आप जहां नजर करोगे वहां आपको मैं दिखाऊंगा, दिखाई दूंगा। और सबके हृदय में देखोगे तो भी मेरे को देखोगे। ये इतना दिव्य ज्ञान है कि आपको बाहर की चमड़ी किसी की नहीं दिखेगी, बाहर का रंग रूप नहीं दिखेगा, हृदय में परमात्मा दिखेगा। वो मैं हूं जो सबके हृदय में बैठा हूं। ऐसी आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। ऐसे ये ज्ञान आपको इस स्तर के ऊपर पहुंचा देगा। तो अर्जुन ने कहा, इतना कोई आदमी पापी हो तो फिर इस दुनिया में तो हम आए क्यों है? बोला, पाप हुआ तब आए हैं। पाप नहीं होता तो इस दुनिया में थोड़ी आते। इस दुनिया को बोलते हैं जेल। जेल में तो वही जाता है जो अपराध करता है। तो हमने कोई पाप तो किया होगा तब आए हैं। तो फिर ऐसे इतना आसानी से, इतना जल्दी हम ऐसी स्थिति पे कैसे पहुंचेंगे? तब भगवान ने आश्वासन देते हुए क्या, अपिचेतस पापेभ्यो, अगर आप बहुत बड़े पापी हैं। कितने बड़ी पापी हैं? सर्व पाप कृतम पाप कृतम। पाप कृतम का अर्थ क्या है? पाप कृत, पाप कृतर, पाप कृतम, गुड बेटर बेस्ट। अब पापी 100 पापी इकट्ठा करके उनमें से 3 चुन लो। उन 3 में से जो नंबर 1 है, वैसे भी अगर हो पाप कृतम, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पापी हो, ठीक है, फिर भी सर्वम ज्ञान पलवे नैव, अगर आपने इस दिव्य ज्ञान की नाव के ऊपर पांव रख दिया, वृजनम संतरिष्यसी, आप निश्चित रूप से भव सागर से पार हो जाओगे। जैसे गंदा नाला कैसा भी हो, अगर गंगा में गिर पड़ा तो गंगा जल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? कितने गंदे नाले वो हरिद्वार के सारे नीचे जाते हैं गंगा में, लेकिन हम तो डब्बे भर के लाते हैं घर में गंगा जल करके, गंगा जल हो जाता है। गंगा जल में इतनी शक्ति है कि सब अभित्रता को शुद्ध कर देती है। तो ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ये ज्ञान की नौका के ऊपर आपने पांव रखा नहीं और आप शुद्ध हुए नहीं। और कैसे होंगे पाप, कहां जाएंगे? तब आज का श्लोक है, यथा एजांसी अग्नि, लिखते हैं क्या इसको? नहीं, तो बोलिए, यथा एजांसी समिद्धो अग्नि भसंसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भसंसात् कुरुते तथा। यथा जिस तरह ईधांसी समिधो अग्नि, लकड़ियों के ढेर को अथवा घास कोई 50-100 क्विंटल पड़ा हो अथवा टन का टन घास हो, लेकिन उसको अग्नि एक चिंगारी लगा दोगे थोड़ी देर में सब भस्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, 100 टन घास और 1 माचिस का दिया सलाई, भस्म होता है कि नहीं होता? हो जाएगा ना। वैसे ही ज्ञान अग्नि, ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये सर्व कर्माणि, सारे कर्मों के फल को, बुरे और अच्छे दोनों को भस्म साथ भस्म कर देगी। ये ज्ञान यहां सारे कर्मों को भस्म कर देता है, जैसे आग लकड़ी के ढेर को, घास के ढेर को जला के खत्म कर देती। इसका अर्थ गुजराती में पढ़ो।
बावर आत्मा तथा परमात्मा,
नहीं नहीं पहले वो अनुवाद अनुवाद
अनुवाद जेवी रीते बढ़ते बढ़तो अग्नि,
जेवी रीते बढ़ते भड़को अर्जुन, बढ़ते भड़को अर्जुन मतलब भड़बड़ भंबट वाली अग्नि एकदम,
जेवी रीते बढ़के बढ़तो अग्नि लाकड़ा ने बाड़ी ने भस्म कर दे छे, तेवी रीते हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि पण भौतिक कर्मो ना सर्व फळो ने बाड़ी ने भस्म कर दे छे।
ठीक है, अब पढ़िए तात्पर्य पहला।
भवन आत्मा तथा परमात्मा विषय पूर्ण ज्ञान तथा तेमना संबंधनी सरखामणी अग्नि साथे करवामां आवी छे।
अच्छा, अब ज्ञान कौन सा, यहाँ क्या लिखा है, ज्ञान अग्नि, तो कौन सा ज्ञान है जिसको अग्नि कहा गया है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये ज्ञान। तो इसका मतलब आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और इन दोनों का ज्ञान, परमात्मा सबके हृदय में भगवान का एक विस्तार है, आत्मा भगवान का अंश है जो हमारा अस्तित्व है। इन दोनों को अलग मानना है। परमात्मा और आत्मा को ऐसे समझाया गया है जैसे एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ का फल खाता है, खट्टा खाता है तो मुंह को टेढ़ा करता है, मीठा खाता है तो मुस्कुराता है। दूसरा पक्षी उस पेड़ के ऊपर साक्षी बन के बैठा है, केवल देखता रहता है। तो आत्मा जो है भोक्ता पक्षी है, जो पेड़ के शरीर रूपी पेड़ के कर्मों के फल को भोगता है, दुख और सुख को। परमात्मा साक्षी रूपे हृदय में बैठता है, क्या करता है, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो साक्षी है। पहले इन दोनों को जानना है, फिर जो साक्षी है वो क्या है, सुहृद सर्वभूतानां, वो सबका शुभ चिंतक है, वो सबका शुभ चिंतक है, उसको भगवान को कहते हैं अज्ञात मित्र है, हम उसको नहीं जानते हैं लेकिन वो हमारा मित्र है। इसलिए परमात्मा का और आत्मा का संबंध कैसा होना चाहिए, ये संबंध जब समझ में आएगा उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान सारे कर्मों के फल को भून के नाश कर देगा, समाप्त कर देगा। अब इस ज्ञान की परिभाषा थोड़ी और आगे सुनिए।
अग्नि पाप कर्मों ना समस्त फलो એટલે કે દોષો ને બાળી નાખે છે, એટલું જ નહીં પણ પુણ્ય કર્મો ના ફળ बंधन।
अच्छा, ये जो अग्नि है केवल बुरे कर्मों का फल नहीं खत्म करती है, अच्छे कर्मों के फल को भी जला देती है। फिर तो हम कहते हैं ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अच्छे कर्मों का फल ये है कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए, चाहे स्वर्ग में जाना पड़े। तो स्वर्ग में जाएंगे फिर भी वहां से वापस लौटना पड़ेगा। तो अच्छे और बुरे कर्मों के फल को नाश कर देती है, इसका मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त कर देती है ये अग्नि, ये ज्ञान की अग्नि। तो अच्छे भी रहेंगे तो भोगने ही पड़ेंगे ना। किसी आदमी को कहा कि तेरे को हथकड़ी लगानी है, लेकिन सोने की हथकड़ी लगाएंगे, बोला जल्दी करो लगाओ, बड़ी अच्छी है। हाँ, सोने की हथकड़ी लगेगी, बहुत अच्छा है, गुड, वेरी गुड। क्यों, क्या विचार है, हथकड़ी तो है, बंधे तो हुए हो, लेकिन सोने का बड़ा अच्छा लगता है, लोहे की नहीं, नहीं ये तो बहुत बुरी है। तो अच्छा फल है सोने की हथकड़ी, लेकिन है तो हाथ बंधे हुए ना, और बीच वाला है ना, तो हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, हाथ में लगी बेड़ी तो बेड़ी है। सोने की जंजीर में तुमको घर में बांध देंगे, बड़े खुश रहोगे। अरे खुश क्या रहेंगे, सोने देखने से थोड़ी खुश हो जाऊंगा, बंधा हुआ तो हूं ना। एक आदमी ने भगवान को प्रार्थना की कि मेरा धन बढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा क्या है, क्या चाहिए? बोले जिसको हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए। भगवान ने बोला तथा अस्तु। घर में गया, ऐसे माइक्रोफोन को हाथ लगाया सोने को हो गया, बड़ा खुश हो गया। ऐसे टेबल को हाथ लगाया सोने की हो गई, बोला अरबों रुपये का एक दिन में माल हो गया। तब दोपहर का समय हुआ, भूख लगी, पत्नी भोजन लाई और थाली को हाथ लगाया रोटी सोने की हो गई। आप यहां ले जाए खाए कैसे बेचारा, है रोटी सोने की हो गई। अभी तो भूखा है, अब जिसको हाथ लगाए सोने का हो जाए तो खाए क्या? अब सोना गले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो पत्नी कहता, मैं पत्नी को हाथ लगाए बोलता मैं नहीं खाता हूं, तू मेरे मुंह में दो। तब तक पत्नी सोने की बन गई। अब तो सोने की पत्नी को देख सकता है, सोने की रोटी को देख सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। तो ये शुभ फल भी ऐसे फंसा देता है और वहां से छूटना मुश्किल हो जाता है। अब आगे पढ़िए।
कर्म फलनी अनेक अवस्थाओं हुई है।
अच्छा, कर्म फलनी अनेक अवस्थाओं हुई से ये कहां से लिया है? ये पद्म पुराण से लिया है। और इस श्लोक को ऐसे का ऐसे पढ़ना है तो नवे अध्याय का दूसरा श्लोक निकालो, नौ अध्यायों दूसरो श्लोक, और उसके अंदर ये ऐसे का ऐसे लिखा है। जो यहां आप पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और वो श्लोक है इसके दूसरे पेज पे नीचे संस्कृत में श्लोक पढ़ा है, देख लो। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्म नैव परलियेत विष्णु भक्ति रतात्मना। मिला? इसका अर्थ पढ़ लो।
जे मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में परोवायेला छे तेमना सर्व पाप कर्म पछी ते पक्व अवस्था में होय संचित होय के पछी बीज रूप में होय तोय ते क्रमशः नष्ट थई जाय छे।
यहां से लिया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया कहां से लिया है? पद्म पुराण का है। अब इसको जहां है वो पढ़ो तो ये समझ में आएगा।
क्रियामान प्रारब्ध संचित तथा पूर्वभुक्त।
अब क्या समझेंगे इसको? प्रारब्ध किसको कहते हैं? जो कर्म हमने किया था उसका फल पक गया और उसके भोगने के लिए हमने जन्म लिया। किसी घर में कोई हमारा रिश्तेदार बना जो हमको सुख देगा, कोई हमारा रिश्तेदार बना जो हमको दुख देगा। हमने जन्म लिया तो हमको मरना पड़ेगा। ये हुआ प्रारब्ध कर्म। दूसरा
क्रियामान।
क्रियामान कर्म का मतलब अभी कुछ ऐसे नए कर्म है जो हम इस जन्म में करेंगे, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं कि अभी हम आगे नए कर्म करने जाएंगे।
संचित कर्म।
संचित का मतलब अभी कर्म किए पहले हमने हैं, अभी वो पक्के नहीं है, अभी उनका फल तैयार नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है।
पूर्व भुक्त।
पूर्व भुक्त इसका क्या अंग्रेज? बीजम, एक है बीजम कूटम, एक बीज रूप है, अभी तो उसका शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये प्रायः ये तीन प्रकार के सीधे हैं, लेकिन चार प्रकार के कर्मों का यहां वर्णन है। जब भगवान के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दिव्य ज्ञान क्या है अगर कोई कहे तो, यहां विष्णु पुराण से लिखा है भक्ति। तो ये सारे कैसे भुन जाते? जैसे कोई बीज है आपके पास, चने का बीज है कि गेहूं का बीज है कि चावल का बीज है, उसको अगर आप भुन दोगे, उसको आप रोस्ट कर दोगे, फिर उसको धरती में डालोगे, उसमें से फल निकलेगा? ऐसे सारे जो बीज रूप है, कूट रूप है, ये सारे भुन जाते हैं। प्रारब्ध जो है वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। मरना तो पड़ेगा, इतना तो रहेगा, लेकिन उसमें भोगने वाला सारा कम हो जाता है प्रारब्ध। तो ये सारे पोस्ट डायरी प्रायरी अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, समझ में नहीं आता। आगे चलिए।
परंतु जीवात्मा की स्वरूप स्थिति नु ज्ञान आ सर्वने बाड़ी ने भस्म करी दे।
अब ये लाइन सब इस पूरे श्लोक के तात्पर्य में ये एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए दोबारा।
परंतु जीवात्मा की स्वरूप स्थिति नु ज्ञान।
जीवात्मा की स्वरूप स्थिति नु ज्ञान। अब देखो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। जीव आत्मानी स्वरूप स्थिति नु ज्ञान, इसको शब्द क्या लिखा है, बट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस। जीव आत्मा ने स्वरूप स्थिति नु ज्ञान, तो जीव आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये ज्ञान। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, जीवात्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, दोनों का संबंध क्या है, हम दास है और भगवान हमारे मालिक है, पूजने हैं। ये ज्ञान होने से भगवान कहता अब तो ये मेरा सेवक हो गया, अब मेरे सेवक को भी कोई बंधन रहे ये मुझे पसंद नहीं। जैसे ही भक्त हो गए तो मुक्त हो गए, भक्त हो गए तो मुक्त हो गए, इसका अर्थ ये है। जीव का स्वरूप ही सेवा का अर्थ, भक्ति का अर्थ क्या है, सेवा। प्रभुपाद पहले ऐसे आचार्य है जिसने भक्ति का अर्थ प्रेममय सेवा लिखा है, इससे पहले किसी ने भक्ति को सेवा नहीं लिखा, भाव लिखा है, लेकिन भक्ति सेवा है, प्रेममय सेवा। और जीव का धर्म प्रेममय सेवा है, और ये जब भगवान की ओर बहने लगती है गंगा की धारा की तरह, तब सारे कर्मों के फल भस्म होने शुरू होते हैं। ये बात साफ हुई, अब आगे चलिए, दो लाइनें बाकी बच गई।
जरे मनुष्य ने संपूर्ण ज्ञान थाई से त्यारे पूर्वना के पछी मरनारा सर्व कर्मो फल भस्म थी जाए। वेदों गुरुदारक्य उपनिषद 4.4.22 में कहवा आव्युं छे के उभे उभे वैश एते तरत से अमृत साधु असाधुनी, मनुष्य पाप तथा पुण्य बन्ने प्रकारना कर्म फलों ने जीती ले छे। मनुष्य पाप तथा पुण्य बन्ने प्रकारना कर्म फलों ने जीती ले छे,
दोनों से ऊपर उठ जाएगा, उपन दोनों रहेंगे नहीं तो कहां जाएगा, वापस भगवान के पास चला जाए, फिर दुनिया में जन्म मरने में आना नहीं पड़ेगा। ये दिव्य ज्ञान की महिमा है। ये जो दो श्लोक है, पहला श्लोक दिव्य ज्ञान गुरु से मिलेगा, फिर दो ज्ञानों दो श्लोकों में उस दिव्य ज्ञान की महिमा है, और फिर एक तीसरा श्लोक इसके बाद भी दिव्य ज्ञान की महिमा का है, और फिर उसके बाद कहेंगे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसको श्रद्धा होगी उसको दिव्य ज्ञान मिलेगा। इसलिए भक्ति शुरू ही श्रद्धा से होती है, आदव श्रद्धा, और भक्ति योग का 12वां अध्याय श्रद्धा से शुरू होता है और श्रद्धा से 20वां श्लोक समाप्त होता है, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, कृष्ण कृत किए सर्व सिद्धि हुए, केवल कृष्ण के कार्य को करने से सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ये विश्वास होना इस दिव्य ज्ञान की पहचान है। और फिर किसको ये ज्ञान नहीं हो सकता उसका वर्णन मिलेगा, तीन तीन प्रकार के व्यक्तियों को ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है, अश्रद्धाना जिसको श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है, और संशय आत्मा जिसको संदेह है। इन तीनों में संशय आत्मा सबसे नीचे स्तर का है, जो भगवत ज्ञान में संशय करता, और फिर भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा उठ के अर्जुन युद्ध करो, आर्म विथ योगा एंड फाइट, उठो इस दिव्य ज्ञान की, इस दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम युद्ध में भाग लो तो तुम्हारा तुम्हारे को कोई पाप नहीं लगेगा, न कोई पुण्य न कोई पाप होगा, तेरा कर्म का सारे फल भस्म हो जाएंगे। इसका युद्ध को हमारा मतलब युद्ध से नहीं है, इसका अर्थ हमारे लिए ये है कृष्ण भक्ति में भावित होकर जो भी कार्य करते हैं उसके अच्छे और बुरे फल अपने आप नाश हो जाएंगे, जीते जी बड़े आनंद से जिएंगे, और जब यहां से जाएंगे तो भगवत धाम के लिए रास्ता साफ मिलेगा। हरे कृष्ण। यहाँ ये श्लोक समाप्त होता है। आपका धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? 40 मिनट हमने कथा कर ली।
कोई ने प्रश्न?
हाँ जी, हनुमान बोलिए।
हनुमान जी,